اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے چند اذکار، اس میں سے ہم دعا استفتاح کر چکے، یعنی نماز شروع کرنے کی دعا، پھر رکوع کی دعائیں کر چکے، قومے یعنی رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کی دعائیں کر چکے. آج ہم کریں گے سجدے کی دعائیں. سجدے کی دعاؤں میں سے پہلی دعا کیا ہے، آپ میرے ساتھ دہرائیے گا. پہلے مل کے پڑھتے ہیں، سبحون قدوسن رب الملائکتی رب الملائکتی والروح. اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، سبحون، کیا ترجمہ ہوگا اس کا، بولیں ذرا. سبحون جی، قدوسن رب الملائکتی فرشتوں کے، وروح چلیے لکھیے، سبحون بہت تسبیح بیان کی جاتی ہے، قدوسن پاکی بیان کی جاتی ہے، ربو رب کی، الملائکتی فرشتوں کے، وروحی اور روح کے، بریکٹ میں لکھ لیجیے، جبرائیل علیہ السلام، روح الامین. ایک سٹریچ میں کیا ترجمہ ہوا، تسبیح بیان کی جاتی ہے، پاکی بیان کی جاتی ہے، فرشتوں اور جبرائیل کے رب کی. شاید ہی کبھی کسی نے یہ دعا پڑھی ہو سجدے میں، جب تک یاد نہیں کی تھی یا اس بک میں نہیں آئی تھی. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ حسن المسلم بک پہ جب یہ دعائیں فرسٹ ٹائم آئی تھیں ہمارے پاکستانی کلچر میں، انڈیا کا تو مجھے نہیں پتا، کسی کے وہم میں بھی نہیں تھا کہ یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. ایسے ہی موسٹلی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلیٰ، بلکہ ایسے لگا مجھے تو شروع میں کہ شاید یہ بدعت ہے، اور اگر اس بک کی اوتھینٹیسٹی کے اوپر یقین نہ ہوتا یا جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں نہ لکھی ہوتی تو پھر کوئی مانتا بھی نہ. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیے کہ دلیل کا وزن ہوتا ہے. تو دعا بہت ہی پیاری ہے، سبحون قدوسن رب الملائکتی والروح، یعنی اگر آپ اس کو انگلش میں دیکھیں تو پرفیکٹ اینڈ ہولی ہی از دا لارڈ آف اینجلس اینڈ دی گبرائیل. اصل میں لفظ سبح کو کبھی بھی ترجمے میں بیان میں تو نہیں کر پائی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا تسبیح بیان کرنا یا سبحان اللہ کا معنی پاک ہے، وہ یہ حق نہیں ادا کرتا کیونکہ سبحہ کے اندر اتنی تکرار ہے. لیکن ہم اپنے الفاظ کو سمیٹتے ہوئے کیا کہیں گے کہ اللہ کی ذات پاک بھی ہے اور مقدس بھی ہے، جو جبرائیل اور فرشتوں کا رب ہے. اب آپ دیکھیں کہ سجدے میں یہ دعا مانگنا، اس کا نماز کی کیفیت سے کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے نا تو اس کو برا لگتا ہے، جھکنا کسی کے آگے بھی اچھا نہیں لگتا انسان کو. آپ نے بہت ہی ہیومیلیشن یا بہت ہی عاجزی کے لیے محاورے سنے ہوں گے، ناک کی لکیریں نکلوانا. جب کسی کام کے کرنے میں آپ کو بہت دشواری پیش آئے تو آپ کہتے ہیں انہوں نے تو ہماری ناک کی لکیریں نکلوا دیں. اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، پہلے کھڑا تھا، سبھی کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا سا رکوع کی کیفیت آئی، کئی دفعہ دن میں کرتے ہیں اس طرح کی کیفیت، کوئی چیز لینے میں، اٹھانے میں، رکھنے میں، کہیں بیٹھ رہے ہیں، بس میں سوار ہو رہے ہیں، گاڑی سے نکل رہے ہیں، رکوع کی کیفیت آبویس ہے. لیکن سجدے کی کیفیت اس سجدے کے علاوہ بالکل ان یوژل کیفیت ہے. آپ سوچیں ذرا، اگر ہم نماز میں سجدہ نہ کرتے یا نہ کرتے یا نہ کریں تو عام زندگی میں ہم کب سجدہ کریں گے اس کیفیت میں؟ چھوٹا بچہ بھی اگر دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ نیچے کر کے تھوڑی دیر چلے تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ آگے سے کسی چیز سے ٹکرا نہ جائے. سجدے کی کیفیت انتہائی عاجزی کی کیفیت ہے. اور قرآن میں آتا ہے وسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو. تو جب ایک انسان جھکے تو اس کو احساس دلایا جا رہا ہے اس دعا کے تھرو کہ تم کسی چھوٹی ہستی کے سامنے نہیں جھکے. وہ سبوح بھی ہے. پھر آپ دیکھیں سبوح فعول کا وزن ہے، مبالغے کا سیگہ ہے، افعل و تفضیل کا سیگہ ہے. ایک ہوتا ہے سبحا یا سبحان یا سبوح، پھر قدوس، قدوس قدس کا لفظ سے سپرلیٹیو ڈگری ہے، قدوس بہت زیادہ ہولی کہہ لیجئے، پاکیزہ کہہ لیجئے، رب الملائکتی وروح، ملائکہ یعنی فرشتے اور جبرائیل جیسے بڑے فرشتے کا تذکرہ کر کے یا यहाँ बता दिया कि वो रब खुद कितना बड़ा होगा। जो फरिश्तों और जिब्राइल का रब है, तो क्या पता चला? उसके सामने झुकने में आर महसूस ना करो, खुशी महसूस करो कि तुम किसी और के दर पे नहीं, अपने रब के दर पे झुके हो। वो लोग जो अल्लाह के माँ सिवा के सामने झुकते हैं, फिर वो क्या पढ़ते होंगे नमाज़ों में? आप देखिए कि इंसानियत जब आसन तकवीम से नीचे गिरती है ना, तो इंसान अपने ही जैसे इंसानों को सजदा करने लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि वक्त के साथ जैसे बाकी चीज़ों में जुरत बढ़ गई है ना, अब इंसानी सतह पे शिर्क की तबाहियां भी बढ़ गई हैं। हमेशा तसव्वुर में आता था किसी की कब्र को सजदा करना। लोग किसी कब्र पे गए, किसी मज़ार पे गए, वहाँ सजदा कर दिया। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि सामने एक जिंदा इंसान को बिठा कर सजदे करने का रिवाज आम हो गया। अल्लाह ताला हमारी कौम से जहालत और शिर्क को ख़त्म कर दे। तो आप इस दुआ को नमाज की दुआ में पढ़ेंगे, और किस फीलिंग से पढ़ेंगे? इतना बड़ा रब है। आप देखिए, दुनिया में अमूमन जिनकी तारीफ़ें की जाती है, ज़रूरी नहीं कि सच्ची तारीफ़ें ही हों, लेकिन रब की तारीफ़ें, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, तो ये शऊर हो। और बिल्कुल बिछने का अंदाज़ है जब ये पढ़ रहे हो ना, उस वक्त अल्लाह ताला की मार्फत के साथ देखें, और जितना गौर व फिक्र कर सके करें, आपको एकदम सुकून का एहसास होगा इंशाअल्लाह ताला। तो सब मिलके 3 दफ़ा पढ़ें इस दुआ को। आपके पढ़ने में वो अंदाज आपको झलक रहा था कि आपका दिल हिल रहा है उससे? एक दफा सुने। अब दोबारा मैं प्ले करूंगी, तो आप इनके साथ पढ़िएगा। अब देखिए किसको पढ़ते ही बिल्कुल मेरे जहन में ना आसमानों का मंजर आ जाता है। हदीस में आता है ना कि आसमानों पे एक उंगली बराबर जगह नहीं जहाँ फरिश्ते ना हो। और आज सूरत नजम का तर्जमा भी आप पढ़ लेते, उसमें भी जिब्राइल का आसमानों के ऊपर जाना और वो सारा दिखाता है। तो शऊर के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो इससे फ़ायदा होगा। कभी ये पढ़ ली, कभी कोई दूसरी दुआ पढ़ लें, तो एक दूसरी दुआ और कर लेते हैं आज हम। दुआ नंबर 2 सजदे की दुआ में से क्या है, दोहराते, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहू दिक्कहू वजिल्लहू। इसके लाम के ऊपर ज़बर कर लीजिए, ये लाम की ज़ेर के साथ आ गया हुआ है। दिक्कहू वजिल्लहू व अव्वलहू व आखिरहू व अलानियतहू वसिर रहू। आपके इस हैंड आउट में कुल्ला हूँ, फिर दिक्का हूँ, फिर जिल्ला हूँ और अव्वल हूँ, ये ऊपर वाली लाइन में सब के ऊपर, शत के नीचे की बजाय शत के ऊपर कर लीजिए, ठीक है? अब इसका तर्जमा लिखते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इग़फिर ली, बख्श दे मेरे ज़म्बी गुनाह, मेरे जो वो ज़म्बी में आ जाएगा, यानी ए अल्लाह मेरे लिए बख्श दे मेरे गुनाह, ये मुराद है। कुल्लहू सारे के सारे, दिक्कहू छोटे, वजिल्लहू और बड़े उनमें से, यानी दिक्कहू उनमें से छोटे, वजिल्लहू और उनमें से बड़े, व अव्वलहू और उनमें से पहले, व आखिरहू और उनमें से आखिरी, वालानियतहू और ज़ाहरी उनमें से, वसिर्रहू और पोशीदा उनमें से। एक स्ट्रेच में क्या तर्जमा होगा? अल्लाहुम्मा अग़फिरली ज़म्बी कुल्लहू दिक्कहू वजिल्लहू व अव्वलहू व आखिरहू वालानियतहू वसिर्रहू। क्या पता चला कि अल्लाह ताला के सामने इंसान अपने गुनाहों की पूरी फहरिस्त पेश करता है। ए अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे, छोटे भी उनमें से, बड़े भी उनमें से, पिछले भी और बाद वाले भी, जाहिर किए हुए भी और छुपे हुए भी। जब कभी अपने किसी गुनाह की शिद्दत में चूरों, कभी आपको आपका गुनाह सोने ना दे, आपका दिल रोने को चाहे, आप पे डिप्रेशन तारी हो, वहशत तारी हो कि मैंने ये किया तो क्यों किया, ये तो बड़ी बुरी बात थी जो मुझसे सरजद हो गई, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, उस वक्त इस दुआ को करें। आप देख रहे हैं कि इतनी वैरायटी है हमारे पास। अगर हम देखें तो सही अहादीस से जो सिर्फ सजदे में पढ़ी जाने वाली दुआएं हैं, उसमें सुबहाना रब्बी आला आला, सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा, फिर सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, फिर अल्लाहुम्मा लका सजदतु व बिका आमनतु व लका अस्लमतु सजद वजही लिल्लज़ी खलकहु व सव्वरहु व शक्का समहु बसरहु तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। फिर इसके बाद देखिए सुबहाना ज़िल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अज़मती। इतनी वैरायटी है हमारे पास, क्या पता चला जिस तरह की कैफियत दिल में महसूस करो वैसी दुआ मांगो। और यकीन करें कि मैं जब भी दुआ मांगती हूँ ना, तो उस वक्त की अपनी मौजूदा कैफियत को पहले जहन में सोचती हूँ। अल्लाह पे बहुत प्यार आ रहा है तो सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह। अपना कोई गुनाह बड़ा ही सता रहा है तो अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी कुल्लहू व दिक्कहू व जिल्लहू व अव्वलहू व आखिरहू व अलानियतहू व सिर्रहू। इसे क्या पता चलता है कि अपने गुनाहों का एहसास होना चाहिए। आप देखिए कि गुनाह मैल की तरह होते हैं, कभी कभी आपको अपनी गंदगी खुद महसूस नहीं होती, लेकिन आप हाथ धोते हैं तो आपके हाथों में से मिट्टी उतरती है। बाज़ दफ़ा आपको पसीने की स्मेल नहीं आती, लेकिन आप शावर लेते हैं तो फ्रेश फील करते हैं। इसी तरह छोटे बड़े मुख्तलिफ गुनाह मिलजुल कर हमारी ज़िंदगी में बोझ पैदा करते हैं। तो इस दुआ से तो वाकई महसूस होता है कि बंदा अपने गुनाहों के बोझ को उठाने से कासिर है। और रोए जितने दर्द के साथ मांगेंगे, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। आप अपने बच्चे पे कयास कीजिए कि आपका बच्चा आपको सताता है या तंग करता है, और फिर आपके साथ लिपटता है और चिल्लाता है, ओ मामा प्लीज़ फॉरगिव मी, ओ प्लीज़ ये भी कर दे, मेरा छोटा भी मेरा बड़ा गुनाह भी, जो मैंने जान के किया जो मैंने अनजाने में किया। तो आपको वाकई महसूस होगा कि ये कितनी प्यार से, ये कितनी तड़प से बात कर रहा है। आपको कितना भी गुस्सा क्यों नहीं आया होगा अपने बच्चे पे, आप उसको छोड़ देंगी। तो अल्लाह ताला तो बहुत ही प्यार करने वाला है, असल बात यह है कि हम उसकी तरफ तवज्जो करें। तो अब इस शऊर के साथ ज़रा 3 दफ़ा मिल के पढ़ें सब। थोड़ा सा भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मिलके पढ़ने की आदत डालें, और उससे पढ़ने में आपको खुद महसूस होगा कि आप कैसे पढ़ते हैं। इंशाल्लाह अगली नमाज़ों में अपने पढ़ना है। अब ये कैसे पढ़ेंगे, सजदे में तो नहीं दुआ खोल के पढ़ेंगे ना, तो पहले से याद करनी पड़ेगी। और एक एक लफ्ज़ पे नज़र रखेंगे तो तर्जुमा आपको दुआ को याद करने में बहुत मदद देगा इंशाल्लाह ताला।